मुरादाबाद यूपी मंडे 6th of December 2010 एंड इट इज इवनिंग पंडाल प्रोग्राम क्लास सिंपल थैंक यू नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यादि पाश्चात्य देश तारिणे तो सवा लाख का सवाल यह है कि हम कौन है तो ये सवाल ही आध्यात्मिक जीवन की नींव है। आप सबको पेन और पार्टी लेके आना चाहिए था, कल सब लेके आओ और लिखो। कोई भी लेक्चर में जाओ तो क्लासरूम। तो भगवद गीता की शुरुआत यहाँ से होती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के रण मैदान में जब थे तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, हे अच्युत, मेरा ये जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में स्थित करो। सेनायोर उभयोर मध्य रथम स्थाप अच्युत। हे अच्युत, श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कर। तो श्री कृष्ण जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं तो अर्जुन दोनों और निरीक्षण करते हुए देखते हैं कि सामने वाला जो सैन्य है उसमें मामा शैल है, मामा शैल गुरु है द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह है भीष्मदेव, और चचेरे भाई तो थे ही, फर्स्ट कजिन भाई सब खड़े हैं, भतीजे। तो ये समझते हैं मेरे ही है और मेरी और तो मेरे है ही। तो जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूं वो तो यहां जान देने के लिए उपस्थित हैं, और ऐसे पूजनीय भीष्मदेव द्रोणाचार्य वगैरह इन सबको मार के मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। और दूसरे भी सैन्य को मारूंगा तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी और उनके पति का संरक्षण हट जाने के सारा समाज में उत्पात खड़ा हो जाएगा और स्त्रियां संरक्षण हट जाने से प्रदूषित हो जाएगी और इससे वर्ण संकर प्रजा का जन्म होगा और वर्ण संकर प्रजा लुप्त पिंड उदक क्रिया, अभी कोई माला नहीं करेगा न जपा करेगा, नहीं तो ये जफा हो जाए, है ना? अभी सुनना है, अभी बिल्कुल आपका कान मेरे मुंह पे सुनो। तो लुप्त पिंड उदक क्रिया, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और कुल धर्म नष्ट होने से सारा पाप की गठरी मेरे सर पर आएगी। इसलिए हे अच्युत, मैं ये युद्ध लड़ना नहीं चाहता। ऐसा कह के रोते हुए विषाद करते हुए रथ के पीछे बैठ गए और हाथ में से गांडीव धनुष गिर गया। और इतने महान योद्धा क्षत्रिय योद्धा एक मिनट में सारी पृथ्वी नष्ट कर सकते थे अर्जुन। एक मिनट में ब्रह्मास्त्र और वरुणास्त्र और कई कई विद्या। तो ऐसे अर्जुन क्या कर रहे, विषाद रो रहे, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो बाद में भगवान कहते हैं, उनको डांटते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको डांटते हैं। क्या डांटते हैं? प्रज्ञा वादांश च भाससे गतासुन गतास्त्र नानु सोचंती पंडिता। आप पंडिता के बोल बोलते हो और पंडित बन गए हो, लेकिन पंडित लोग मरे हुए और जिंदा है उनके शोक नहीं करते। नानु सोचन असोचान्त्वम सोचन्त्वम प्रज्ञा वादान च भाससे प्रज्ञा वादान। तो भगवान उनको डांटते हैं कि तुम पंडिताय के बोल बोलते हो और पंडित लोग गए हुए मर गए हुए और जिंदा लोगों की चिंता नहीं करते, और अंतवत्तु मे देहा नित्य सोक्ता शरीरिण नित्यश्च उक्ता शरीरिण। और ये देह अंतवत्तु इमे देहा, और ये शरीर पड़ने वाले ही है, गिरने वाले ही है, मरने वाले ही है। अंतवत्तु इमे देहा नित्य स उक्त शरीरिण शरीर अर्थात आत्मा ये नित्य है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। देहिनो आत्मा देह में रहने वाला देही नो देही देह शरीर देही शरीर में रहने वाला आत्मा। तो यह सवाल आपका सवाल है, हम देह है शरीर है या देही नो आत्मा है, ये सवाल आपका सवाल। और अगर ये अच्छी तरह हमें समझ आ जाए और समझ के इन ज्ञान पर हम चले तो कभी भी हमें दुख नहीं हो सकता, दुख नजदीक नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। दुख शरीर को है, आत्मा सत चित आनंद है, आनंदमय अभ्यास। आत्मा का अभ्यास, आत्मा का स्वभाव है आनंद। तो ये आत्मा कैसे दुखी हो सकता है और सुख भी कैसे, सुखी भी कैसे हो सकता है? आत्मा को न सुख है न दुख, आनंद। आत्मा का स्वभाव है आनंद। सुख प्लस मच मोर इसको आनंद बोलते हैं। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम जवनम जरा। तो ये आत्मा यही शरीर में, कुमार का शरीर, युवान का शरीर और बुढ़ापे का शरीर प्राप्त करता है, लेकिन आत्मा वही रहता, आत्मा वही रहता। आत्मा की पहचान है चेतना, चेतन। जहां भी चेतना है वहां आत्मा है, वहां जैसे जैसे जहां ये बल्ब है वहां हीट एंड लाइट, जहाँ सूर्य है तो सूर्य में से क्या निकलता है, हीट, उष्मा, ऊर्जा और तेज। तेज और उष्मा सूर्य नहीं है, लेकिन ये सूर्य की शक्ति है। इसी तरह आत्मा में से क्या निकलता है, चेतना। चेतना नख से लेकर सिख, सिखा तक, ये आत्मा एक देश स्थिता अग्नि ज्योत्सना विस्तारणीय था परस्य ब्रह्म नव शक्ति एकदम धारित जगत समथिंग लाइक परस्य शक्ति एक देश स्थित अग्नि। अग्नि एक जगह पर स्थित है लेकिन ज्योत्सना, उनकी ज्योत्सना, उनकी लाइट, तेज सारी जगह फैलती है। अग्नि एक जगह है लेकिन ज्योत्सना विस्तारणीय था परस्य ब्रह्म नो शक्ति। श्री कृष्ण की शक्ति सब जगह फैली हुई है। तो ये आत्मा श्री कृष्ण की शक्ति है, पराशक्ति, और इसीलिए ही आत्मा में चेतना है। इसीलिए ही आत्मा में चेतना, जैसे वेदों में उदाहरण दिया गया स्फुल्लिंग, आग में से स्फुल्लिंग निकलती है, आग में से चिंगारी, हाँ क्या स्पार्किंग जो भी हिंदी शब्द है ना, क्या बोलो, जोर से बोलो, स्पार्किंग, राइट, स्पार्क इंग्लिश शब्द है, चिंगारी, स्फुल्लिंग। तो अग्नि में भी हीट एंड लाइट है, तेज और प्रकाश। उसी तरह जो अग्नि से बाहर निकला स्फुल्लिंग, उसमें भी हीट एंड लाइट है, स्फुल्लिंग। स्फुल्लिंग में हीट एंड लाइट, तेज और उष्मा क्यों है, क्योंकि अग्नि में है, ये अग्नि में से निकली है। तो इसी तरह ये जीव एक कृष्ण का अंश है, इस और कृष्ण में परस्य ब्रह्मनो शक्ति, कृष्ण में सब शक्ति है, इसलिए आत्मा में भी शक्ति या हीट एंड लाइट, चेतना, चेतना है। और जीव, जीव की जो चेतना है, श्री कृष्ण की जो चेतना है, उनको कोई लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में पैदा कर सकता है, कहीं पैदा हो सकती है, नहीं। चेतना भौतिक जगत में आ ब्रह्म से ब्रह्मना लोका, पाताल से ब्रह्मलोक तक, चौथ भुवन में कोई भी चेतना पैदा कर सकता है, देवी देवता है, साइंटिस्ट, कोई भी चेतना कौन पैदा कर सकता है? तो ये चेतना, इनको हम बोलते हैं आध्यात्मिक या जीव या आत्मा, आत्मा आध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक, ये भौतिक जगत से परे, पर है, अलग है, भौतिक जगत की ये पैदाश नहीं है चेतना और आत्मा। तो ये सवा लाख का सवाल है, सवा लाख की सोच है, और यही आध्यात्मिक जीवन की नींव है। ये सोच समझ ही आध्यात्मिक जीवन की क्या है, नींव, फाउंडेशन। अगर ये ज्या लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं त्या लगी साधना सर्व जुट्ठी। जब तक आपने आत्मा तत्व पहचाना नहीं, जाना नहीं, समझे नहीं, तब तक सारा आध्यात्मिक जीवन खोखला रहता है। साधना सर्व जुटी, सब साधना और भक्ति और सब कुछ जीरो, सब कुछ शून्य। तो हमें पहले समझना है कि हम आत्मा है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहयति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, हे जीवन में आत्मा कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा का शरीर बदलता रहता है। इसी तरह जब ये शरीर निकम्मा हो जाता है तो भगवान अपनी अनुकंपा कृपा से हमें नया शरीर देता है। उसमें धीरज तत्र न मोहयति, उसमें मोह दुख करने की क्या जरूरत है। तो भगवान कहते हैं इन सब की गड्डी पुरानी हो चुकी है। जैसे आपकी मारुति 800 20 साल चल गई और कार्बोरेटर नहीं चलता और स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक नहीं चलती, कुछ नहीं चलता और आप चला रहे हो एक्सीडेंट का भय, तो कोई अनुकंपा से कृपा से आपको कहें कि लो भाई 50 लाख की गाड़ी आपको दी जा रही है, ले लो फ्री में, तो कौन ना कहेगा, सब ले लेंगे। पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी लो। तो उसमें दुख क्या है? अगर पुरानी चली गई और नई 50 लाख की मिल रही है तो आनंद होगा कि दुख होगा? आनंद होना चाहिए। तो ये बूढ़ा शरीर, उसमें इंद्रियां शिथिल हो जाती है, खाया नहीं जाता, पचाया नहीं जाता, सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता, पंपिंग ब्लड, हृदय पंपिंग नहीं करता, फेफड़े क्या बोलते हैं आप, लंग्स को क्या बोलते हैं, फेफड़े श्वास नहीं लेता, लेता है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करता, और करता है तो ब्लड को शुद्ध नहीं करता, या तो किडनी, नई किडनी लगाओ, अभी कुछ साइंटिस्ट ने नई किडनी खोजी है कि किडनी पंपिंग करती रहेगी ब्लड। तो ये सब ऑर्गन, वो सब अवयव, ये सब हमारे इंद्रियां, शरीर काम नहीं करता, दुखदायी हो जाता है। कई लोग में बेटी होती है, बेटा होता है, पति होता है, पत्नी होती है, वो खुद बोलते हैं कि अभी भगवान को आप प्रार्थना करो, भक्त महाराज आप प्रार्थना करो कि उनको ले ले। कई लोग बोलते हैं, हमें अभी में 2 दिन की बात है, भूल गया मैं कौन था, अतरौली में कौन था, अच्छा बोलते हैं ले लो अभी बहुत हो गया, अभी ये देह नहीं चाहिए, जीवन नहीं चाहिए, ये संसार नहीं चाहिए, ले लो इनको। तो माँ ऐसा भी, माँ बेटी ऐसा बोल सकती है, अपनी पत्नी ऐसा बोल सकती है? कि इनको ले लो। क्यों ले लो? शरीर दुखदाई बन गया, ये गाड़ी दुखदाई बन गई, इसलिए अच्छा है कि छूटे शरीर से। तो भगवान अनुकंपा करके तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोहयति। भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि दुखदाई देह अभी तो छोड़ दे, मैं नया देता, नई गाड़ी। देह यंत्र आरूढ़ानी माया, माया से बना हुआ ये यंत्र है, शरीर यंत्र है ना, यंत्र है शरीर, और माया से बना हुआ यंत्र है। तो माया से बना हुआ यंत्र हमारे साथ एक नहीं बन सकता, ये अलग ही रहता है आत्मा से। आत्मा आध्यात्मिक है, यंत्र भौतिक है, भूतों से बना हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे बना हुआ ये यंत्र है। तो ये यंत्र जब जब काम का नहीं रहता, जीर्ण हो जाता है, यंत्र जीर्ण हो जाता है, तो भगवान अपनी अनुकंपा से हमें क्या करते हैं, दूसरा यंत्र देते। दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म, पार्जजात पुनर्जन्म। बोलो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम राम राम।
तो ये है सवाल का सवाल, हम कौन है? हम आत्मा है। जैसे कोई पत्नी है और पत्नी का पति मर गया और पति का शव उनके सामने पड़ा है और पत्नी रो रही है, क्या रोती है? मेरे पति चले गए, मेरे पति चले गए। तो उनका पति कौन था जो चला गया? शरीर आत्मा या दोनों? शरीर और आत्मा दोनों, उनका पति दोनों था, कौन था? हाँ, कौन था? हाँ, शरीर आत्मा या दोनों, उनका पति कौन था? शरीर तो उनके सामने पड़ा है, रोने की क्या जरूरत है? ये तो हम तो वैसे भूल रही है, लेकिन शरीर तो उनके सामने पड़ा है और रो रही है, मेरे पति चले गए, पति चले गए, ये रो रहा है, मेरी पत्नी चली गई, पत्नी चली गई। तो उनका पति का शरीर उनके सामने पड़ा है, अगर दोनों थे, शरीर और आत्मा दोनों उनके पति पति थे, या तो शरीर पति था, तो शरीर सामने पड़ा, आधा रोना चाहिए आधा हंसना चाहिए कि आधा चला गया आधा तो मेरे पास रह गया, ऐसा रोती है, आधा रोती है, पूरा पूरा रोती है ना, पूरा रोती है। तो पूरा कुछ चला गया, आधा कुछ नहीं चला गया, पूरा चला गया। और वो क्या है, पूरा चला गया क्या? आत्मा शरीर या दोनों? हाँ, तो ये बुद्धि है, ये बुद्धि है। तो ये समझना पड़ेगा, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आध्यात्मिक जीवन में आपका काम नहीं बनेगा, सब खोखला रहेगा। ठीक है, तिलक किया, माला कर ली और कुछ मंदिर चले गए, बस कोई फायदा नहीं। फायदा कब होगा? जब आत्मा के स्तर पर हम स्थित हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा जीवन है आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, और शरीर पांच भूतों का बना है, पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये शरीर भौतिक तत्वों से बना है। शरीर किस चीज से बना है? भौतिक तत्वों से। इसलिए शरीर भौतिक है, तो हम भौतिक जीवन जीते हैं या आध्यात्मिक जीवन जीते हैं? आध्यात्मिक जीवन आत्मा के, परमात्मा के संबंध में जो जीवन जीते हैं उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन। और शरीर और शरीर के संबंधी के लिए जो जीवन जीते हैं हम वो कौन सा जीवन है? भौतिक जीवन है। तो 24 घंटे में आपके लिए कितना जीते हो और शरीर के लिए कितना जीते हो? खोखला है ना कि सही है? हाँ, सब कुछ शरीर के लिए कि कुछ आत्मा के लिए करते हो? हाँ, कुछ तो करते हैं, कुछ तो लगाया, अर्थात शरीर के लिए ही ज्यादा, शरीर के लिए ही ज्यादा होता है ना? 2 घंटा हमारे लिए कर लिया, आत्मा के लिए माला जप कर ली, 2 घंटा कैसे ज्यादा करती हो? ज्यादा होता है, बहुत अच्छा है। कितने घंटे?
आरती पूजा करते हैं, उसमें भी टाइम लगता है, वो भी एक आध्यात्मिक सेवा है।
वेरी गुड, आध्यात्मिक। ऐसा आध्यात्मिक जीवन, खाना पकाओ 2 घंटा तो 2 घंटा आध्यात्मिक जीवन हो गया, भगवान को भोग लगेगा, भगवान के लिए बना रहे हैं। तो चेतना बदलनी है ना? शरीर शारीरिक चेतना नहीं, भौतिक चेतना नहीं, कृष्ण के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए। तो आत्मा का स्वाभाविक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन। जैसे मछली का स्वाभाविक जीवन क्या है? पानी। वेरी गुड, पानी। मछली का स्वाभाविक जीवन क्या है? पानी। मछली को पानी से बाहर निकाल के सुंदर सोफे पर खाना सुंदर, रहना सुंदर, सब कुछ सुंदर उनको दो, उनको आनंद मौज होगी। क्यों नहीं? क्योंकि आपने उनका स्वाभाविक जीवन छीन लिया। उसी तरह हम भौतिक जीवन जीते हैं तो हमारा जो स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक जीवन, और जीते हैं भौतिक जीवन, शरीर के संबंध में जीते हैं। तो इट इज लाइक ए फिश आउट ऑफ वॉटर। आपकी मछली कहा है? पानी से बाहर। मछली कहा है आपके? के अंदर है। अगर अंदर है तो मेरा की तरह 24 घंटा। अगर मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण की सेवा ही मेरा एकमात्र धर्म है, आध्यात्मिक जीवन ही मेरा सही जीवन है, तो मैं एक पल भी क्यों गवाऊं? अव्यर्थ कालत्वम नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तु माम दृढ़व्रता, नमस्यन्तस माम नित्या, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त सततम। तो वो कहा है? वो कहा? तो ये तो बुद्धि नहीं बनी, बुद्धि नहीं बनी। फिश आउट ऑफ वॉटर, मछली का है बाहर, पानी से बाहर। ये भौतिक जीवन में सब तड़पड़ा रहे, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव और दुख, सास का दुख, बहू का दुख, ससुर का दुख, ननद का दुख और कमाने का दुख, बॉस का दुख और कई कितने दुख, दुख की गठरी के साथ हम चलते हैं। ये सब इसलिए कि हमारी मछली पानी से बाहर है। मछली को दुख तो तब हुआ जब पानी से बाहर, अगर वो मछली वापस पानी में चली जाए फिर मौज मजा, नाचना गाना खाना पीना सब कुछ। तो हम अगर पगा गुगर बिना गुगर बाद मेरा कोई शोक मग्न दुखी कोई नाचता है, कोई दुखी है, किसी के यहाँ कोई मर गया तो राम बोलो भाई राम, वहां कोई नाचता है? दुखी कोई नाच सकता है? लोग बोलते मीरा को कितना दुख, पांडवों को कितना दुख, भक्तों को कितना दुख। भक्तों को पूछा कि उनको दुख है या सुख? उनके सुख का अंत नहीं होता। और दिव्य सुख ब्रह्म सौख्यम था अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख। कोगा गुगर बाद मेरा नाचिरी कृष्णात उत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जनप्रियो प्रिय करो निरमत सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। कृष्णात उत्कीर्तन गान नर्तन, कोई दुखी गाता है? किसी के घर कोई मर गया अथवा किसी को हृदय का रोग हो गया तो वो गाएगा मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, ऐसा कुछ गाएगा? हाँ, ये पीछे गंगा है इसलिए मैं गा रहा हूं पीछे गंगा है, कोई गाएगा? गाएगा कौन? जो आनंद विभोर में है वो गाएगा ना। तो ये आध्यात्मिक जीवन आपको देगा। भौतिक भौतिक भूत मरे हुए हैं, भूत में आत्मा चेतना नहीं है, जड़ है, निर्जीव है, जड़ है, और जड़ने से आनंद नहीं मिल सकता। भौतिक जीवन जड़ जीवन है, उसमें से आनंद कैसे मिलेगा बताइए, कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता? पत्थरों में से तेल कैसे निकालोगे, निकालोगे? आपको पत्थर का पर्वत दे दूं, उसमें से 1 किलो तेल निकाल के बताए, निकलेगा? तो ये जड़ जगत, जड़ शरीर, जड़ सब कुछ, भौतिक भौतिक भौतिक, उसमें से हम आनंद नाचना चाहते हैं, गाना है, सब फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, खोखला है, सब कुछ खोखला। इसलिए मैंने पहले कहा कि जब तक ये आत्मा तत्व नहीं समझोगे तब तक सारा खोखला है। जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हियो नहीं त्या लगी साधना सर्व जुठी, जूठा, सब कुछ जूठा है। तो ये रियल सोच समझ भगवान दे रहे हैं। तो ये जीव ये न जाए थे, भगवान नेगेटिव कह रहे परिभाषा कर, जीव को समझाने के लिए भगवान हमें उल्टा समझा रहे, अदर वे न जाए थे न मृियते कदाचिन। ये जीव कभी मरता नहीं, न जन्मता है, शरीर का मरण शरीर का जन्म होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मैं भी ये जन्म और मृत्यु से परे हूं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मैं भी जन्म और कर्म से दिव्यम, उसी तरह जीव भी न उनका जन्म है न उनका मरण है। भगवान जीवात्मा जीव आत्मा को उल्टी भाषा में समझा रहे हैं, न जायते न मृयते और उनका मरण भी कभी नहीं है, लेकिन हम मरण का डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं मैं शरीर हूं और शरीर मर जाए तो मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा, इसलिए उनको भय रहता है मरण का। मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा शरीर बूढ़ा हुआ है, आप कहां बूढ़े हुए? न जायते न मृयते कदाचिन, कभी भी, नेवर एवर, कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा भूया, और नहीं था नहीं रहेगा और नहीं है ऐसा भी नहीं। ये जीव नित्य स्थानो अव्ययम अव्ययम है, कभी उनका क्षय नहीं है जीव का, नित्य स्थानो। न जायते न मृयते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा भूया, अजो अजन्मा है, ज अजन्म अजन्म, अजो नित्यम नित्य, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुरा, और शाश्वत है सनातन है और पुरातन है पुराण। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर मर जाने पर भी ये आत्मा मरता नहीं है। तो यहां कौन मरेगा, यहां कौन, किसका मृत्यु होगा? हाँ? किसका मृत्यु होगा? यहाँ सब मरोगे? हाँ? कोई नहीं मरेगा। भगवान कह रहे हैं यहाँ अर्जुन को, क्या कह रहे हैं कि ये सब मरने वाले नहीं, आप समझते हो कि मर जाएंगे लेकिन मरने वाले नहीं, क्योंकि आत्मा है तो अज्ञानता में है, मरने वाला कोई नहीं। न जायते न मृयते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मर जाने पर भी ये सब मरने वाले नहीं है। तो ये सवाल आपकी सोच है कि हम कौन है। हम आत्मा है और ये आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं, कभी भी। तो भगवान आत्मा को मेरा अंश कहते, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, हृदय में उनकी स्थिति है और ये आत्मा के अंदर परमात्मा है, अंतर्यामी रूपे परमात्मा आत्मा, अणियो अणियात महतो महियात, अणु में भी अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरंतरंस्तम, अंडांतरस्थ परमाणु अणु परमाणु में भी अंतर्यामी रूपे श्री कृष्ण वास कर। तो ये आत्मा हमें बराबर समझना होगा, केशाग्र सतभागस्य सतदा कल्पितस्य च, भागो जीवस्य विग्नेय सच अनंताय कल्पते, अनंत जीव है और जीव का कद कितना है, यह वेदों का श्लोक है कि बाल होते हैं, स्त्रियों का बाल होता है तो वो जैसे, स्त्रियों का इसलिए उदाहरण है कि मैं देता हूं कि उन वो बाल काटते नहीं, तो जो बाघ बाल का अग्र भाग होता है वो बायफर्केट दो हो जाते हैं, तो उसके एक भाग का जो टिप होती है, टिप जो अगला अग्र भाग, बाला अग्र भागस्य सतदा सत सौ, वो अग्र भाग का सौ भाग करें और वो सौ भाग में से एक भाग लें हम और उनके सौ भाग करें, इतना जीव का कद है। 1/10,000 ऑफ अ टिप ऑफ ए हेयर, तो ये एक कद है। बाला अग्र सतभागस्य सतता कल्पितस्य च, और अनंत है, सच अनंताय कल्पते, अनंत जीव है। तो ये जीव हम आत्मा है, ये बराबर गंभीरता से हमें समझना होगा और इसके ऊपर स्थित रहना होगा। जब हम ये आत्मा के स्तर पर रहेंगे, हमेशा स्थित रहेंगे, तो फिर दुख होना ही, कोई भी प्रकार का दुख हमें नहीं होगा। अत्यंतिक दुख निवृत्ति, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति। आपको दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता अगर आप आत्मा के स्तर पर रहोगे। तो आत्मा के स्तर पर रहने से क्या होगा, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो यार दुख होना ही। भक्ति विनोद ठाकुर जीव कृष्ण का दास है और हम जीव हैं और कृष्ण का दास हैं हम, ये विश्वास अगर हम हमेशा जारी रखें, भूल ना पाए, तो हमारे नजदीक दुख कभी भी आ नहीं सकता, कभी भी दुख आ नहीं सकता। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे राम राम राम।
तो ये जीव का स्वभाव है, क्या स्वभाव है, आनंदमय अभ्यासात। जीव का स्वभाव क्या है, आनंद है, इसलिए वो सुख की खोज में हमेशा रहता है। सुख की क्या करता है, खोज करता है, आनंद कहाँ मिलेगा, चिरिप चिरिप चिड़िया भी वेरी आनंद आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है, चिड़िया भी बोलती है ना सुबह, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है। तो आनंद की खोज, चिड़िया आनंद की खोज, चिरिप चिरिप, जैसे जीव सब जीव सुबह जागते हैं तो वो क्या करने लग, खोज किसकी खोज करते हैं, आनंद, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है, पैसा में आनंद है, स्त्री में आनंद है, पुरुष में आनंद है, पार्टी में आनंद है, पार्टियों में आनंद है, खान पान में आनंद है, आहार निंद्रा सोना, बारह बारह एक एक बजे सूरज उगेगा लेकिन वो नहीं उठेंगे, आनंद आहार निंद्रा भय, मैथुन में आनंद है, मैथुन कहाँ है, मैथुन कहाँ है, आनंद की खोज है ना, पीना शराब और कहीं कहीं लोग पीते हैं कि आनंद के लिए, लेकिन मरते हैं, पीते नहीं है, उनका मृत्यु है वो, जो भी हो लेकिन आनंद की खोज सबको है, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ, आनंद। तो जीव ये भूल करता है, जीव आप सुनो, सोचो, बुद्धि लगाओ कि मैंने अभी तक आपको जीव आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा भौतिक नहीं है। तो ये आत्मा आध्यात्मिक, आत्मा आध्यात्मिक सजातीय, चीजों में अगर आनंद ढूंढे तो मिल जाए, लेकिन विजातीय में आनंद ढूंढे तो कैसे होगा। ये भौतिक जगत विजातीय है, भौतिक जगत निरानंद जड़ है और जड़ आनंद नहीं है, निरानंद है। भौतिक जगत निरानंद है, आनंद में नहीं है। फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चपल सुख दिखाई दे रहा है, चपल सुख मिलता है कई क्षणों के लिए, बीड़ी या लिकर शराब तो चपल सुख मिल जाएगा, लेकिन बाद में फिर से दूसरी बीड़ी, दूसरा पैक बोलते ना शराब। तो अगर उनको आनंद मिल गया होता एक पीने से होता तो दूसरा पीने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आनंद नहीं मिला। आप गुलाब जामुन अच्छे लगते रसगुल्ले, आपको रसगुल्ला खिलाओ 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 15, 20, 30, 50, बाद में 50 के बाद यहां तक हो गया ना, बर्पिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, बर्पिंग को ऐसा हवा बाहर निकलती उसको क्या बोलते हैं, जटार जकार डकार 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 हो गया है ना। बाद में मैं आपको अरे इतना एक ही खा लो, एक और खा लो, आनंद खत्म हो गया। अगर आनंद होता आपको तो खा लेते, लेकिन क्योंकि विजाती आनंद है भौतिक। हम आत्मा आध्यात्मिक है, ये शरीर भौतिक है, ये जड़ जगत भी भौतिक है, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना है, तो ये दोनों विजाती है, दोनों विजाती है। जैसे आप गधा है और घोड़ा है, दोनों विजाती है, और दोनों को आप साथ में कब आनंद करो करेंगे, कर सकते हैं। स्वभाव अलग, वो भौंकेगा ये भागेगा और सब कुछ अलग, विजातीय है ना। और दोनों को आप आनंद करना बोलो तो कैसे करेगा, कर सकता है, विजातीय है। उसी तरह आत्मा आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है, विजातीय है, और हमेशा जीव भौतिक चीजों में आनंद ढूंढता है, तो विजातीय हो गया ना, तो आनंद कैसे मिलेगा, चपल सुख मिलेगा। तो आप कहोगे कि भाई खान पान का क्या करूं, हमें खान पान चाहिए, तो भगवान ने सब कुछ बैलेंस सृष्टि बनाई है, चिड़िया को राक्षसों को सबको मिलता है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। अभी तो कुत्ते भी रोटी नहीं खाते हैं, रोटी बड़ी बड़ी सूख जाती है रोड़ों पर, ब्रेड डालते हैं तो ब्रेड भी सूख जाती है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, उनके लिए कितनी कड़ी मजूरी। मजूरी क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें कुछ आनंद चाहिए। विफले सेविनु कृपण दुरिजन चपल सुख लव लागिरे। चपल सुख, परमानेंट सुख नहीं, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, चपल सुख, एक छोट तनिक सुख के लिए विफल है, कोई फल कोई बुद्धि नहीं बनती। विफल है सेविनु, सेवा करता हूं, नौकरी करता हूं, सेविनु कृपण दूरीजन मक्खी चूस, कृपण का अर्थ क्या है, मक्खी चूस, आपको मक्खी की तरह चूस लेगा, ऐसा कृपण दूरीजन की हम सेवा करते हैं, क्यों? चपल सुख लव लागिरे, क्षणिक सुख के लिए, कि ये मुझे घंटे का 10 रुपया देगा और मुझे वो निचोड़ देगा, मेरा अर्क निकाल देगा, लेकिन मुझे 10 रुपया मिल जाएगा। चपल सुख लव लागिरे, तो सुखी खोज जीव करता है गलत जगह पर, गलत जगह। क्यों गलत जगह? क्योंकि जीव आध्यात्मिक है, जीव ये भौतिक जगत की पैदाश नहीं है। सजातीय सुख ही परमानेंट सुख हमें दे सकता है, सजातीय आत्मा कृष्ण परमात्मा, ये सजातीय है। श्री कृष्ण का नाम आध्यात्मिक नाम है, दिव्य नाम है, सजातीय है। श्री कृष्ण का धाम आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, वो सुख दे सकता है हमें। श्री कृष्ण की शक्ति, दिव्य शक्ति, पराशक्ति, या तो योग माया आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद देने वाली शक्ति, दिव्य शक्ति आध्यात्मिक है, इसलिए हमें सुख मिल सकता है। परमानेंट सुख, सनातन सुख, हमेशा का सुख हमें मिल सकता है, क्योंकि ये सजातीय, सब सजातीय, ये सजातीय सब क्रियाएं ऐसी हमारी हो कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हो, तो ये सब जीवन, ये क्रियाएं जीवन बनाती है। आपकी 24 घंटे में कुछ क्रियाएं होती है, वो सब क्रिया अगर कृष्ण के संबंध में है तो वो क्रियाएं आध्यात्मिक है, सब क्रियाएं आध्यात्मिक है। और आत्मा जब आध्यात्मिक जीवन में सुख खोजता है तो उनको सनातन सुख मिल जाता है। इसलिए हम 40 साल से हम ये कृष्ण के संबंध में हम जी रहे हैं और जीते रहे, क्योंकि आनंद का वर्धन होता जा रहा है। हमें आनंद का क्या होता है? वर्धन। लेकिन भौतिक जगत में जो भी चीज से आपको आनंद मिलती है, लाओगे तो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा आनंद, 3 दिन आनंद चलेगा, 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, साल चलेगा, बाद में आनंद क्या होता है? खत्म हो जाते हैं। आनंद लिए लाते हैं वो दुख का कारण बन जाता है। आखिरी में क्या हो जाता है? कई पति पत्नी शादी करते हैं, क्या क्यों करते हैं? फिर हमें आनंद सुख मिलेगा, तो 1 साल सुख मिला और आगे जाते हुए तलाक मिला तो कोर्ट कचहरी, पत्नी मुझे 10 करोड़ चाहिए, उनके पास 50 करोड़ है, और पति बोलेगा कि नहीं दूंगा, ये मेरा है, और फाइटिंग। और अभी क्या हो गया? आनंद के लिए तो शादी की, एक क्या हो गया? और माँ बाप भी, बेटा शादी कर, बेटा शादी कर, जब वो आती है बहू तो सास कहती है, ओ अब मेरा जीवन बेकार, ये तो झगड़ा झगड़ा क्यों? अभी तक तो बोल रहे थे कि बेटा शादी कर, वंश का वर्धन हो, और अभी झगड़ा और टंट और अलग रहना। और तो ये आनंद की परिभाषा है, भौतिक भौतिक आनंद की परिभाषा। लगता है संसारिनु सुख एवु झांझवाना नीरज एवु। मीरा क्या कहती है? संसारी का सुख कैसा है? वो मृग मरीची जैसा, मृग मरीची समझते हो ना, क्या है? पानी दिखाई देता है रण में, है ना? तो मृग वहां पहुंचता है पानी की खोज में, प्यासा है, और वहां जाता है तो पानी और आगे दिखाई देता है, तो वहां जाता है, और तृष्णा लगी है, बहुत तरस तरस लगी है पानी की, तो वहां जाता है, पानी नहीं है तो दूर ले दिखा देता है, वहां जाता है, तीसरा प्रयत्न, चौथा प्रयत्न, और ऐसे करते 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 पूरा हो जाता है। तो मीरा कहती है संसारी, मीरा ज्यादातर द्वारिका रही, इसलिए उनको उनका गुजराती भाषा में थोड़ा टच है उनके सॉन्ग में, तो गुजराती भाषा जैसा ही सॉन्ग है कि संसारी नु संसारी का सुख एवु सुख ऐसा झाझवा न नीर जैसा, नीर पानी, झाझवा का नीर मृग मरीचा का पानी जैसा, परणी ने रंडाऊ और शादी करना और बाद में विधवा होना, संसारी नु सुख झाझवा न परणु तो प्रीतम प्यारो अखंड सौभाग्य मारो रंडावानो भय टड़ो रे। अगर मुझे शादी ही करनी है तो ऐसे प्रीतम प्यारे से शादी क्यों ना करूं जो कभी मरने वाला ही ना हो, और मुझे रंडावानो मुझे विधवा होना नहीं पड़ेगा, मुझे मुझे कभी भी विधवा नहीं होना पड़ेगा। तो ये संसारी लोगों के शादी करने से क्या फायदा। तो यह है सुख की खोज। जीव हमेश क्या करता है कि हाँ इतना हो जाए मुझे सुख मिल जाएगा, और वहां से गया इतना हो जाए मुझे सुख मिल जाएगा, और सारी जिंदगी भाग दौड़ करता रहता है सारी जिंदगी। क्यों? वो विजातियों में सुख सोचता है, भौतिक जड़ जगत में, निरानंद जगत में सुख खोजता है। तो ये सुख कैसे मिल सकता है? जैसे अपना शरीर, हमें तीन शरीर हैं, एक सूक्ष्म शरीर है कारण देह, जिसको कहते कारण देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। स्थूल देह ये शरीर, पांच इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और ग्यारहवा मन, ये इंद्रियों का बना हुआ शरीर स्थूल देह कहते हैं, भौतिक देह। और सूक्ष्म देह मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म देह शरीर, ये भी भौतिक है। और कारण देह, इसको आत्मा, आत्मा को कारण, ये देह का कारण है, इसलिए उनको कारण देह कहते हैं। आत्मा नहीं है तो आपका देह नहीं होगा, देह का कारण है आत्मा, तो इसलिए उनको बोलते हैं कारण देह, स्पिरिचुअल सच्चिदानंद शरीर, सच्चिदानंद बॉडी, कारण देह। तो कारण देह सच्चिदानंद देह है, हम वो है, इसलिए हमें सच्चिदानंद चीजों में ही हमें आनंद मिल सकता है। सीधी सी फॉर्मूला है। सजातीय, अगर हम सब सजातीय हैं तो आनंद हमें मिल सके, सब मनुष्य हैं तो आनंद कर लेंगे। अगर मनुष्यों में शादी की पार्टी में घोड़े कुत्ते और मनुष्य और गधे और ऊंट और सब शादी करने शादी में पार्टी में आ रहे हैं तो आनंद होगा, विजातीय हो गया सारा, विजातीय हो गया, कैसे शादी, शादी में घोड़े गधे नाचेंगे मनुष्यों के साथ, कैसे आनंद आएगा। सजातीय में आज आनंद होता है। सी जीव ये सच्चिदानंद है और उनको सजातीय कृष्ण सच्चिदानंद, उनका धाम परिकर लीला गुण रूप ये सब सच्चिदानंद है, उसमें आनंद आ सकता। तो ये शरीर हमारा जो स्थूल देह कौन, इंद्रियों का जो बना है, पांच ज्ञानेंद्रिय कौन सी, किसको पता है ज्ञानेंद्रिय किसको, और किसको पता है, आप पढ़ी लिखी हो, किसनी कितनी ज्ञानेंद्रिय हमारे, हाँ कौन सी, वेरी गुड, आँख कान नाक जीभ त्वचा, और कर्मेंद्रिय कितनी है? पांच। कौन सी? हाथ पैर मल मूत्र के दो, मल और मूत्र चार, और पांचवी। हाँ वेरी गुड, बोलिए। वाणी ये पांच कर्मेंद्रिय है, कर्म करते हैं इससे, और पांच ज्ञानी जैसे ज्ञान हम संपादित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय आंख कान नाक जीभ त्वचा, ज्ञानेन्द्रिय, और पांच कर्मेंद्रिय हाथ पांव मल मूत्र की और वाणी। तो ये स्थूल देह, तो ये स्थूल देह से ही हम आनंद की खोज कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति, जिसको हम इंग्लिश में सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, ग्रेटिफाइंग सेंसेस, यू नो, कान नाक जीभ त्वचा, टेस्ट, पकोड़े परोठे परोठी और गुलाब जामुन, और है ना, यही हमारे आनंद की परिभाषा है। हमारा आनंद की परिभाषा बहुत सीमित है। इंद्रिय तृप्ति यही आनंद, ये आनंद नहीं है, ये फसाना, आप फंस जाते हो इंद्रिय तृप्ति में, और इंद्रिय तृप्ति से हमारा मृत्यु होता है। हर इंद्रिय की तृप्ति में हर जीवात्मा का कोई, जैसे कि आप देखो भौरा होता है, भौरा मधु के लिए कमल पर बैठ के मधु बस तल्लीन हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो तल्लीन हो जाता है मधु, और कमल बंद हो जाता है, शाम हुई बंद हुआ और अंदर भौरा मर जाता है। जैसे लाइट है, अभी तो कोई इतनी इंसेक्ट्स है नहीं, लेकिन लाइट से वो आकृष्ट हो जाते हैं, बहुत इंसेक्ट्स, जंतु, जीव जंतु, और लाइट में, आग में वो कूद पड़ते हैं और मर जाते हैं। हरणी हिरण होती है, हिरणी अब हंटर होता है, उनको कान से पकड़ता है, बहुत सुंदर म्यूजिक बजाता है, और वो मुग्ध हो जाती है हिरणी, और उनको पकड़ लेता है, खा जाता है। तो ये इंद्रिय तृप्ति हमें सुख नहीं दे सकती। इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु पराबुद्धिर्यो बुद्धेः परसस्तु सह। तो इंद्रियाणि परण्याहुर, इंद्रिय तृप्ति अगर श्री कृष्ण के संबंध में हो, श्री कृष्ण के संबंध में सब इंद्रियां, तो तृप्त हो सकती है, क्योंकि सजातीय है, ये सजातीय है, आध्यात्मिक, कृष्ण आध्यात्मिक, हम आध्यात्मिक, हमारा जीवन आध्यात्मिक, और इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में लगे, इसलिए इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाएगी, सरचार स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगी, तो वह आनंद मिल सकता है। ये जीव आनंद की खोज करता है, लेकिन तरीका भी रॉन्ग है, और जहां वो खोज करने जाता है वो भी रॉन्ग, वो भी गलत, सब कुछ गलत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्य स्थान तितिक्षो भारत। मात्रा स्पर्श, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय का स्पर्श होता है, उसमें से सुख और दुख पैदा होता है। सुख और दुख दोनों भौतिक है, जड़ है, और भी जाती है, आत्मा का ये नहीं है, आनंद ये आध्यात्मिक है। सुख और दुख ये शरीर के मुताबिक मिलता है। अगर आपका शरीर सुअर का है तो सुअर का सुख है गंदगी में नाक मुंह डालेगा और उसमें से आनंद निकालेगा गंदगी में से, तो ये आनंद है क्या? विजातीय आनंद है। तो मात्रा स्पर्श इंद्रियों का इंद्रियों के विषय के साथ क्या होता है? स्पर्श होता है, तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है? सुख और दुख, सुख और दुख उत्पन्न होता है। मात्रा स्पर्श स्तुकौंते शीत उष्ण सुख दुख दा देने वाले आगमा पाइनो नित्यम, आने वाला और जाने वाला ये सुख है, परमानेंट सुख नहीं है, हमेशा सनातन सुख नहीं है। भगवान क्या शब्द उपयोग करते हैं? आगमा पाइनो नित्यम। इसलिए ताम तितिक्षो भारत, ये आने और जाने वाले का आने जाने का स्वभाव वाला ये सुख है, इसलिए उनको सुख दुख को तू सहन कर, सहन कर। आगमा पाइनो नित्यम स्थान तितिक्षु भारत। और दुख, दुख भी आता है सुख भी आता है, और वो अपने शरीर के मुताबिक हमें मिलता है, जैसा जैसा शरीर वैसा वैसा सुख दुख। और भौतिक है ये सुख दुख। दुख की परिभाषा, दुख सबसे बड़े दुख कौन से है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा और पुष्पा रोग, क्या? जन्म मृत्यु बुढ़ापा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। उसमें दुख और दोष देखना चाहिए, भगवान कहते हैं गीता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, उसमें दुख और दोष। दोष का अर्थ है अच्छा नहीं है। लोग सालगिरह मनाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं, मेरे बेटे का जन्मदिन है आज तो मनाते हैं, दोष देखना चाहिए इसमें।
हाँ, रोज एक साल कम हो जाता है हर साल,
और क्या, और काम हो जाता है वो भी दोष है। हम तो सनातन है, हमारा कभी कम नहीं होता। तो जन्म और मृत्यु बुढ़ापा और रोग, उसमें दुख और दोष का दर्शन करना चाहिए, दुख दोषानु दर्शन है। तो लोग उसमें सुख मानते हैं, सुख मानते हैं बेटे की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी सुख। बहुत दुख है, ये दुख 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 का ही सागर है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लोग समझते हैं जन्म सुख है, सुख नहीं है। और आनंद की तो बात ही छोड़ो, माता के उदर में आपको जन्म मिले तो सात महीना तक आपका सर नीचे टांगे ऊपर ऐसे लटकाया जाए, आपको उदा उल्टा लटकाया जाए, और वो भी टाइट, कोई थोड़ी सी जगह होती है अंदर की, भाई माता थोड़ी थोड़ी फैल जा, मैं थोड़ा आराम कर लूं थोड़ा, ऐसा होता है अंदर टाइट। माता भी दुखी है, बच्चा भी दुखी, और सब माताएं बोलती हैं बस ये बच्चे के बाद कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे, इतना दुख प्रसव का, माताएं सब बोलती है। लेकिन बाद में फिर से जाना, वो सुख के लिए वो भागते हैं, सुख मिल जाए, लेकिन सुख के पीछे दुख। आनंद के लिए कोई भागता नहीं, आनंद आनंद का अर्थ है सत चित आनंद या आध्यात्मिक चीज है भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, उनकी क्रियाओं में, भक्ति में आनंद मिल सकता है, सजाती है। ये सब दुख है। हम सोचते हैं कि सुख की ओर, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक क्लेश दुख है। देवों से हम चाहते हैं कि ये देव की उपासना करें, हमें सुख मिल जाए, लेकिन देव दुख भी देते हैं, ज्यादातर दुख देते हैं देव। बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, बहुत बारिश, कम बारिश, इंद्र ये चार इंचार्ज ऑफ बारिश, अतः अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तो देव से दुख। चाहते हैं सुख, लेकिन हो जाता है दुख। तो आदि दैविक, आदि आत्म, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्लेश का अर्थ है हमारा खुद का हम दुख पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। मैंने आपको गाली नहीं दी हो, और गुप्ता जी बोले मुझे गाली दी, अरे भाई मैंने नहीं दी, बोलते गाली दी, उनको दुख हो गया, खुद पैदा कर लिया दुख, टेंशन, डिप्रेशन, दुख नहीं है लेकिन पैदा कर लेते लोग टेंशन डिप्रेशन। कोई जरूरी नहीं है टेंशन करना, क्या जरूरी है, कोई दुनिया का अंत तो आने वाला नहीं है, क्या जाएगा। आप अगर कुछ हासिल नहीं हो पाया और इनसे टेंशन डिप्रेशन हो जाता है आपको, तो अगर वो हासिल नहीं किया तो दुनिया का अंत आ जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक क्लेश, लोग अपना खुद का दुख खुद पैदा करते हैं, कई दुख है जो हम खुद पैदा करते हैं, और आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। डेंगू का मस्कीटो काटेगा आपको, हो गया एक महीना फिट है ना, सास बहु सास को आपके घर में तो नहीं होता, लेकिन कईयों के घर में होता है, पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, घर से शुरू करते हैं पहले दुख, ये गलत है। और दूसरों से प्रेम करते हैं, घर में झगड़ा और दूसरों से प्रेम, बाहर प्रेम और घर में दुख झगड़ा, तो ये आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक क्लेश। तो ये सब दुख हमें निवारण करना चाहिए, तो सुख भी नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए। सुख दुख ये मन में, ये नरसिंह मेहता बोलते हैं, सुख दुख मन में न आनी है, घट साथे रे घड़िया, टाड़िया थे कोई ना नवटड़े, रघुनाथ ना गढ़िया। अर्थात सुख और दुख मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये घट साथे गढ़िया, घट अर्थात शरीर के साथ जैसा आपको शरीर मिलता है वैसा आपको सुख दुख मिलता है। मैंने कहा आगे, सुअर के शरीर में, गधे के शरीर में, चिड़िया कुत्ते के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, उसमें भी एक पुरुष का शरीर, दूसरा पुरुष का शरीर, तीसरा पुरुष, हर शरीर में अलग अलग सुख दुख। जैसा आपका शरीर आपको मिलेगा वैसे आपको सुख दुख मिलेगा। तो सुख और दुख आता जाता रहता है, इसको मन में नहीं लाना चाहिए। घट साथे रे घड़िया, टाड़े रे कोई ना नवटड़े, रघुनाथ ना जड़िया। रघुनाथ श्री रामचंद्र भगवान का ये सब फिक्स किया हुआ है, जैसा करोगे वैसा सुख दुख। तो ये काल, कर्म और माया हमें दुख देती है, कार्ड आएगा, जाना पड़ेगा। बाद में कहोगे कि डॉक्टर मुझे 5 मिनट दे दो, मैं इतना बिजनेस कर लूं। कोई बिजनेस नहीं होता, कार्ड आपको पकड़ेगा और खींच के ले जाएगा। कर्म का बंधन, सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। सो शैल यू रीप, जो आम का पेड़ बोओगे तो आम मिलेगा, उसमें बैर या अमृत नहीं मिलेगा, अमृत यहाँ बहुत होते हैं। तो ये कार कर्म माया, माया का फंदा, तो ये सब दुख, हम चाहते हैं सुख लेकिन मिलता है दुख। तो सुख हमें तभी मिल सकता है जब हम सजातीय आध्यात्मिक क्रियाओं में हम लगे, तभी हमें सुख मिल सकता है। ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि आनंद का क्या, आनंद क्या है। नायं देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान इरहति विद भुजाम्य। तपो दिव्यम पुत्र का एन शुद्धेन अस्मात् ब्रह्म सौख्यम ब्रह्म सुख्यम त्व अनंतम। अनंत ब्रह्म सुख मिलेगा, अर्थात आनंद मिलेगा। कैसे? कि तपो दिव्यम पुत्र का, तपो तप करना चाहिए। तप का अर्थ क्या है? कि श्री कृष्ण के लिए वॉलंटियरली स्वेच्छा से कृष्ण के लिए कुछ कष्ट उठाना, उसको बोलते हैं तप। तप किसको कहते हैं?
स्वेच्छा से कष्ट उठाना भगवान
किसके लिए?
भगवान कृष्ण की प्रसन्नता और सेवा के लिए,
प्रसन्नता के लिए कष्ट उठाना, उसको बोलते हैं तप। ऐसा नहीं कि कड़े धूप में इधर उधर इधर गिधर आप तापमान फायर में बैठो बीच में और तप करो, ये तप नहीं है। तपो दिव्यम, दिव्य तप, भौतिक तप नहीं। मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, मुझे धन राशि चाहिए, इसलिए मैं तप करूं, वो तप नहीं। ध्रुव महाराज जैसा तप, ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था अपने पिता से भी बड़ा, भौतिक तप ये नहीं। हालांकि ध्रुव महाराज बाद में भक्त बन गए, पहले तो भौतिक इच्छा थी। तो हमें ऋषभदेव क्या कहते? तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्रो आप दिव्य तप करो। क्यों? क्योंकि ये दिव्य तप से हमें ब्रह्म सुख त्व अनंतम, दिव्य सुख। तपो दिव्यम पुत्र का एन शुद्धेन अस्मात् ब्रह्म सौख्यम च अनंतम। अनंत आध्यात्मिक आनंद, वो कैसा? अनंत अव्ययम, जिसका अंत न हो। आनंदान बुद्धि वर्धनम, वर्धन आनंद का वर्धन हो, वो दिव्य सुख है, वो आनंद है, वो उनकी खोज हमें है। हमें किसकी खोज है? दिव्य आनंद की, दिव्य सुख की। तो वो कब मिलेगा? आनंदान बुद्धि वर्धनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्त नाम संकीर्तन। भगवान का नाम और हम सजातीय है, हम आत्मा आध्यात्मिक, नाम श्री कृष्ण का आध्यात्मिक सजातीय, इसलिए वहां ही सुख मिल सकता है, वहां ही सुख मिल सकता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम, हर पल आनंद का वर्धन। प्रतिपदाम अम्बुद्धि वर्धनम, सागर जैसा आनंद मिलेगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का दरिया सागर, छोटा नहीं आनंद, चपल सुख, फ्लिकरिंग मटेरियल भौतिक सुख, ये बात नहीं है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, सठ गोस्वामी इतना, जितनी जायदाद, इतना वैभव, इतना राजपाट, सुंदर पत्नी, अप्सरा जैसी, इंद्र की पत्नी जैसी पत्नी, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में ज्यादातर, उनके जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वृंदावन में खाली कंथा एंड कोपिन पहन के, ऐसी ठंडी में दुख होता तो वापस चले जाते, लेकिन उनका आनंद का वर्धन होता रहा, आनंद का अंबुदी सागर का वर्धन, आध्यात्मिक आनंद, तपो दिव्यम पुत्र का एन शुद्धेन तस्मात् अनंतम ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम, अनंत सुख सौख्यम ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक सुख, सौख्यम सुख आध्यात्मिक सुख, ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम अनंत। गुलाब जामुन खाओगे 50, उसके बाद बस हो गया, लेकिन आध्यात्मिक गुलाब जामुन खाते रहो का आनंद लुटाते रहो। वहां कोई ससेशन नहीं है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम, अनंत सुख, क्योंकि ये सजातीय, दोनों सजातीय, आत्मा और श्री कृष्ण क्या है, सजातीय, उनका नाम रूप लीला गुण धाम परिकर शक्ति क्या है, सजातीय है। शक्ति कौन सी, अलादिनी शक्ति श्री राधिका। तो ये सुख, ये सुख की खोज, जीव को सुख की खोज है, हर रोज सुख की खोज करता है। चिड़िया वेरी सुख, वेरी चिप 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 चिप, वेरी सुख वेरी सुख, लेकिन पता नहीं है कि सुख कहाँ है। तो सुख कहाँ मिल सकता है, जो अनंत सुख हो, जो वर्धन, जो सुख का वर्धन हमेशा आध्यात्मिक जो पदार्थ है वो वर्धन, एक्सपेंडिंग, घटता नहीं बढ़ता है। तो ये आनंद बढ़ता है, आनंद ब्रह्म सौख्यम तो अनंत, तो इसकी खोज सबको है, और ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कहाँ ये सुख मिलेगा, कहाँ हमें आनंद मिलेगा। सब गलत जगह पर सुख की खोज कर रहे हैं सब, और इसीलिए उनको सुख होता नहीं। कोई भी चीज करते हैं लगता है सुख मिलेगा, लेकिन ज्यादातर दुख मिलता है, क्योंकि भौतिक चीजों में सुख खोज रहे हैं, भौतिक चीजों में। कोई भी आप उदाहरण लो, आपके आपके शरीर से आपको ज्यादा आनंद मिलेगा कि ज्यादा दुख मिलेगा, क्योंकि भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर से आपको ज्यादा सुख मिलता है ज्यादा दुख मिलता है, आप हिसाब करो। राजा भी क्यों ना, राजा भी क्यों ना, कोई भी चीज में आप देखोगे तो भौतिक चीजों में आप सुख खोज रहे हो, उसमें ज्यादातर दुख मिलेगा। चपल सुख मिलेगा, आनंद थोड़ा मिलेगा, लेकिन ज्यादातर दुख। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कैमल होता है, कैमल ऊंट, तो ऊंट थॉर्न खाता है, थॉर्न का अर्थ है कांटे वाला एक वनस्पति है, थॉर्न क्या बोलते हैं उनको, बबुल बोलते हैं, कांटा वाला बबुल खाता है, तो उनके मुंह में लहू निकलता है, तो लहू बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मधुर स्वाद, खूब स्वाद, तो स्टूपिड मूर्ख ऊंट क्या सोचता है कि थॉर्न जो है बबूल बहुत बहुत मधुर है, बहुत मधुर है, और खाता है और लहू निकलता है, मधुर मधुर। लेकिन स्टूपिड मूर्ख कैमल मूर्ख ऊंट देखता नहीं कि ये जो सूप मुझे मिल रहा है वो मेरा दुख का कारण है, मेरा लहू, और सारा मुंह बाद में फूल जाएगा उनका कांटे से खाने से। बुद्ध है तो इसी तरह हम हैं, हमें थोड़ा सा सुख दिखाई देता है उसके लिए कितने बड़े दुख को हम आमंत्रित कर देते हैं, बहुत बड़ा दुख आमंत्रित कर देते। मेरा मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता था, लेकिन ये हमारा प्रभुपाद जी कहते हैं कि चलो जो भी हो, लेकिन मैं कहना चाहता था कि हमें ये आध्यात्मिक जीवन में आनंद मिल रहा है इसलिए जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और अगला जन्म भी इसमें ही मिलेगा, क्योंकि हमारी चेतना, हमारी वासना, हमारी इंद्रियां, हमारा सब कुछ इसमें है, इसलिए हमें अगला शरीर यही मिलेगा, चाहे सुअर का हो चाहे गधे का हो, जो भी हो, लेकिन होगा यही, होगा यही, भक्ति होगी। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम सदा तद्भाव भाविता अंध काले च मामेव मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंते सा गति जो हमारी अंत में मति होगी, तो हम भक्तों को और क्या मिलेगा, भक्ति मिलेगी, और उनमें ही सुख जो है वो कहीं नहीं। भगवान के संबंध में जो हमें सुख मिलता है, क्योंकि ये सजाती है, याद रखो, सजाती आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण दोनों सजाती है, विजातीय नहीं है, इसलिए वहां ही सुख, अनंत सुख। तो इसीलिए आपको 16 माला करनी ही पड़ेगी, क्यों कि नाम सजाती है, नाम क्या है, सजाती है। तो 16 माला ए डे विल मेक योर डे। कितनी करोगे, कितनी करते हो, करते हो, शाबाश, गुड, 16 माला तो ये है आनंद। और 16 माला भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये हरि नाम ही हमें अनंत आनंद दे सकता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाप श्रेय कैरव। श्रेय हमारा श्रेय करने वाला हरि नाम है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत। पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है ये नाम, पूर्ण अमृत का आस्वादन। भौतिक चीज कोई भी करा सकते है पूर्ण अमृत का स्वादन। तो चैतन्य देव का शब्द है, कैसे झूठ हो सकता है। पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम और सब जीवात्माओं को शांत सांत्वना शांति देने वाला है। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का नाम का गुण हमें आनंद देना, भगवान का नाम 16 माला ये कम से कम। वैसे जितना आपका समय जिस दिन में आध्यात्मिक जाता है उतना आनंद आपका बढ़ेगा, इसलिए 16 माला कम से कम। वैसे तो नाम 24 घंटा लेना चाहिए, नाम कितना लेना चाहिए, सततम कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन नहीं होता तो 16 करो, 16 से कम नहीं। ये प्रभुपाद जी का नियम है 16 माला। तो 9:30 बज गए होंगे, कितने बजे? 10 मिनट बाकी है, 9:15। तो 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रभु जी ने मुझे बताया कि कुछ सवाल जवाब शंका समाधान, किसी को कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एट ऑल? 15 मिनट बैठे रहेंगे फिर सब मौन समाधि लगा।
शास्त्रों में बताया है कि इंसेक्ट है या चूहे हैं या
क्या? शास्त्रों में बताया है कि
नरकों का वर्णन जहाँ आता है तो वहाँ बताया है कि कोई इंसेक्ट को भी हम मार देते हैं, चींटी वगैरह को या चूहे, तो उनको मारने से भी हमको अगले जन्म में वही लोग शायद कष्ट देते हैं, ऐसा लिखने। नरक 24 तरह के जो नरक है उनके वर्णन में आया है। तो मैं पूछा था जैसे कि कुछ इंसेक्ट के कारण हमारी कहीं बांध में मिली, जैसे कुछ रैट्स हो जाते हैं घर में और फिर वो हमारे विघ्न पे चढ़ते हैं, परेशान करते हैं, भोग भी छूटा जाता है, तो फिर तो उन लोगों को अपने वो हमें कष्ट दे रहे हैं, तब तो हमारी ये मतलब ड्यूटी बन जाती है ना कि हम उनको मारते हैं, फिर भी हमको पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा।
पाप तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा,
लेकिन वो हमारे ठाकुर जी के ऊपर जैसे चढ़ रहे हैं और उनको
शास्त्रों में कीड़ी मकोड़ी चीटी चिड़िया मारना ये हिंसा है और अहिंसा परमो धर्म, मारना नहीं चाहिए। तो जो भी मारता है स्पेशली ठीक है, अगर कोई बिच्छू है कोई सांप है तो मार सकते हो, उसमें शास्त्र अनुमोदन देते हैं क्योंकि ये जहरीले द्वेषी जीव है, तो उनको मारने में शास्त्रों की अनुमति है। लेकिन दूसरे जो जीव आत्मा है उनको मारना नहीं चाहिए, जीवेर दया वैष्णव सेवा।
हाँ, जो घुन हो जाते हैं उसको निकाला जाता
क्या?
है और जो भी हम कोई भी सीरियल होता है, चावल है या आपका गेहूं है, उसमें होते हैं घुन, छोटे छोटे इंसेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको तो हम मारते ही ना, उसमें इंसेक्ट की साइड पेस्ट की साइड सब यूज किया जाता है।
हाँ, तो ये तो करते तो है करते तो है, लेकिन शास्त्र को हम उल्टा तो नहीं कहेंगे, है ना? पैदा ही मत होने दो, अंदर पेस्टिसाइजर रख सकते हो तो पैदा नहीं होगा।
वो रैक्स होते ना चूहेदानी में बंदी नहीं होते, वो
तो उनके लिए पिंजरा लाओ। पिंजरा बोलते क्या बोलते, केजीस, केजीस से नहीं पकड़े जाते हैं,
नहीं हो पाते, वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको मालूम है हम इसमें बंद हो जाएंगे,
तो फिर लिव विद इट।
महाराज वो हमारे थे ना ऊपर, हमारे ठाकुर जी के ऊपर चढ़ते हैं ना, उनकी माला सारी कुतर देंगे, उनके फूलों की माला, उनका भोग भी बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है।
तो क्या करोगे, मारोगे?
मारनी पड़ेगी।
कैसे मारोगे?
आपसे पूछ रहा है।
वो दवाई लगा, दवाई रखे,
दवा रखे।
अच्छा, वो तो गंध भी आएगी आपको, दुर्गंध, कहीं कहीं अंदर जाके मर जाते हैं, तो रोग भी होता है इनसे कभी कभी। नहीं भाई, शास्त्र मैं नहीं कहता, मैं नहीं मारता, है ना, मैं नहीं कहता, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, thou shall not kill, है ना? तो चूहे के लिए कुछ अलग खाना रखो, प्रभुपाद जी के पिताजी रखते थे। तो ये हत्या, जीव हत्या वर्जित है। और कोई सवाल? और कोई सवाल है? सब लोग लेट क्यों आए? और वो भी कम संख्या में, पहला है तो वहां तक ठीक है। तो आरती करते हैं। वो तो संग्राम जैत प्रभु कहेंगे वैसे होगा, हमारे हाथ में थोड़ी है। तो कुछ आगे वाला अनाउंसमेंट करो या आरती जो भी हो कीर्तन। मेरी सेवा पूरी हो, मेरी सेवा पूरी हुई आज की। यस,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वृंदावन से पधारे महाराज का, उन्होंने अपने मुख के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। जो शुरू में एक टॉपिक दिया था कि मैं कौन हूँ, लगभग उसको क्लियर हो चुका होगा कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। उसी को लेके पूछ रहे थे, किसी को क्वेश्चन तो नहीं। अगर अभी भी समझ में ना आया हो कि आत्मा कौन है और शरीर कौन है तो पूछ सकते हैं, वरना महाराज आपसे फिर क्वेश्चन, अगर आपको करना है तो करिए, वरना महाराज क्वेश्चन कर लेंगे किसी की समझ में आया नहीं आया। जो क्वेश्चन नहीं करते हैं समझ लिए सबके समझ में आ गया, और जो क्वेश्चन करते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है,
नहीं आया तो वो समझने का
प्रयास करेंगे। जैसे माता जी पूछ रही थी कि अगर भगवान के विग्रह पे चूहा चढ़ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, मारना चाहिए या, तो महाराज ने बताया कि शास्त्र में कहा गया है कि नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ समाधान करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाराज का जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और कल भी एक टॉपिक को लेकर महाराज का लेक्चर होगा, पता नहीं क्या टॉपिक होगा, ये तो जब भक्त लोग यहाँ आएंगे तो ही पता लगेगा। तो आप सभी